Surgióme.
नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज हम चर्चा करेंगे इस विषय पर, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन भारत के वैश्विक विमानन केंद्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। इस विषय पर हमसे बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एविएशन एक्सपर्ट अजय जसरा। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
जी, धन्यवाद।
अजय जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डे के पहले चरण का आज उद्घाटन किया है। कैसे देखते हैं आप इस घटनाक्रम को हमारे पूरे एविएशन सेक्टर के लिए?
देखिए, जब से मोदी जी 2014 से आए हैं, उन्होंने जो उड्डयन जो हमारा क्षेत्र है इसके लिए काफी काम किया है। उन्होंने उड़ान के क्षेत्र में बहुत काम किया है और उड़ान की नई नीति जो देखी जाए, जो थोड़ी सी बदली हुई है, उसमें भी जो हवाई अड्डों के ऊपर काफी जोर दिया गया है नए हवाई अड्डों के लिए। तो उस दिशा में अगर देखा जाए तो ये जो जेवर एयरपोर्ट है, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये एक बहुत ही बड़ा मील पत्थर साबित होगा। क्योंकि अगर आप दिल्ली एनसीआर की बात करें तो इसकी जो पूरी डेवलपमेंट है, इसका जो पूरा विकास है, वो दिल्ली सेंट्रिक है। दिल्ली में एक एयरपोर्ट है, दिल्ली में ही सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। तो अगर एक मल्टी नोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात की जाए तो जेवर की बहुत पहले से जरूरत थी, काफी समय से ये चला आ रहा था। खुशी की बात है कि इस सरकार ने इसको क्रियान्वित कर दिया, इसको शुरू कर दिया। क्योंकि ये एयरपोर्ट जो है वो ना केवल यात्रियों की सुविधा के लिए बहुत बड़ा, क्योंकि अगर एक बहुत बड़ा इलाका है नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, जिसके यात्री जो है वो बहुत लंबा सफर तय करके इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेवल करते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी सुविधा रहेगी। लेकिन इससे बड़ी एक और संभावना है यहाँ पर, कार्गो और लॉजिस्टिक टर्मिनल की। ये एयरपोर्ट बहुत बड़ा मील पत्थर साबित हो सकता है भारत के आर्थिक विकास के लिए, भारत की निर्यात में इसका एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। क्योंकि तीन बड़े इंडस्ट्रियल हाउस हैं यहाँ पर इस एरिया में, और एशिया का सबसे बड़ा कंटेनर सेंटर भी इस एयरपोर्ट के पास है। तीन बड़े हाईवे हैं, यमुना एक्सप्रेस वे है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये एयरपोर्ट जो है ना केवल उत्तर प्रदेश के लिए, संपूर्ण भारत के लिए लॉजिस्टिक और कार्गो पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है।
और जैसा आपने कहा कि एक बहुत बड़ा हब है दिल्ली, और आपको लगता है कि एक ब्रॉड स्ट्रैटेजी है सरकार की? हमने देखा कि पिछले वर्ष नवी मुंबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलप किया गया, उसका उद्घाटन हुआ। सो जो डी कंजेस्ट करने का, जो पुराने एयरपोर्ट्स हैं, आपको लगता है एक रणनीतिक भी एक पहल है?
बिल्कुल, अगर अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार देखा जाए तो न्यूयॉर्क को लीजिए, लंदन को लीजिए, पेरिस को ले लीजिए, हर जगह कम से कम दो या तीन बड़े एयरपोर्ट हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। वो भी इसी दृष्टि से ही भारत में भी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं और उड्डयन विभाग है या उड्डयन मंत्रालय है, उसने यही सोचकर ये एयरपोर्ट बनाया। क्योंकि इससे पहले एक हिंडन एयरपोर्ट आया है छोटा, जो रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे रहा है। तीसरा ये जेवर एयरपोर्ट आ गया, तो ये डीकंजेशन की तरफ भी एक कदम है। कि दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर भयंकर प्रेशर है इस समय, और फ्लाइट्स की भी मारामारी आज की डेट में। नए फ्लाइट्स अगर आप इंट्रोड्यूस करना चाहें तो एक बहुत बड़ी समस्या एयरलाइंस के सामने आती है। तो जेवर जो एयरपोर्ट के आने के बाद वो समस्या जो है काफी हद तक खत्म हो जाएगी। तो नई अगर एविएशन, नई एयरलाइंस अगर आती हैं तो दे कैन गो अहेड विद दैट।
तो आप संक्षेप में थोड़ा सा बता सकते हैं कि आकार क्या है इस एयरपोर्ट का, और चार चरण में ये इसका फुल डेवलपमेंट होगा?
देखिए, ऐसा जो बड़ा प्रोजेक्ट होता है एक ही रूप में हम इसको लॉन्च नहीं कर सकते, ये चार चरणों में ही आएगा। और इसके अंदर एक जो एक बड़ी चीज जो मेरे को दिख रही है वो है MRO की। प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी तरफ इशारा किया, इसके बारे में बात करी। क्योंकि जब एक एयरपोर्ट बनता है तो उसके आसपास एक पूरा इकोसिस्टम पैदा होता है। उस इकोसिस्टम में MRO होता है, उस इकोसिस्टम के अंदर हॉस्पिटैलिटी होती है, होटल्स होते हैं, उसमें लॉजिस्टिक्स की अलग अलग कंपनियां होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम क्रिएट होता है जिससे ना केवल डेवलपमेंट होता है, ना केवल बाहर से इन्वेस्टमेंट आता है, कि लोकल एम्प्लॉयमेंट भी बहुत तगड़ी जनरेट होती है।
40 एकड़ में फैले, जैसे आपने अभी मेंशन किया, मेंटेनेंस, रिपेयर्स और ओवरहॉल, MRO फैसिलिटी की आधारशिला भी आज प्रधानमंत्री ने रखी। उन्होंने इसके बारे में क्या कहा अपने संबोधन में, और जो प्रगति हो रही है भारत में एविएशन सेक्टर की, उसके बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं।
भारत का एविएशन सेक्टर बहुत तेजी से गति और विकास कर रहा है। जैसे जैसे भारत में नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, वैसे वैसे नए हवाई जहाजों की जरूरत भी बढ़ती जा रही है। इसलिए देश की अलग अलग एयरलाइंस ने सैकड़ों नए जहाजों के ऑर्डर दिए हैं। ये जो नई सुविधाएं नए जहाज आ रहे हैं, इनको उड़ान वाले और इसको उड़ाने वाले, इनमें सर्विस देने वाले, मेंटेनेंस से जुड़े ऐसे हर काम के लिए बहुत बड़ी संख्या में वर्कफोर्स की जरूरत होगी। ये युवाओं के लिए बहुत बड़ा अवसर है, इसलिए हमारी सरकार एविएशन सेक्टर में ट्रेनिंग की सुविधाओं का भी विस्तार कर रही है। हमारी सरकार ने ठाना है कि एमआरओ सेक्टर में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे।
उन्होंने बताया कि कैसे रोजगार के भी सृजन बहुत पैदा होंगे, तो एविएशन सेक्टर रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है?
कोई भी ट्रांसपोर्ट का माध्यम हो, चाहे रेलवे हो या बस का हो या जहाजरानी हो, एविएशन भी उनमें से ही एक है। और इसके आसपास जब भी ये पैदा होता है तो इसके आसपास काफी सपोर्ट सिस्टम बनता है, और वो सपोर्ट सिस्टम के लिए जरूरी होता है कि नए अलग किस्म की कंपनियां हैं। फॉर एग्जांपल एमआरओ आएगा, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए अलग कंपनियां आएंगी, कुछ कंपनियां आएंगी जो खाना सप्लाई करेंगी, फ्यूल एटीएफ के लिए अलग कुछ कंपनियां और एक सिस्टम लॉन्च होगा, जो यात्री आएंगे उनके रहने के लिए आसपास होटल बनेंगे। तो इस हिसाब से एक पूरा एक अलग से इकोसिस्टम क्रिएट होता है, एक अलग कई इंडस्ट्री इससे सपोर्ट को मिलती है। और सबसे बड़ी बात है जो एमएसएमई है, फार्मर्स हैं, क्योंकि भारत में उड़ान के साथ साथ बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा एक कृषि उड़ान भी है। कृषि उड़ान के तहत जो है गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सब्सिडीज दे रही है कि एयरक्राफ्ट के में आप केवल कार्गो में कृषि का सामान एक राज्य से दूसरे राज्य लेके जाएं। और जिस जगह पर जेवर है उसके आसपास बहुत बड़ा इलाका है जहां किसान कृषि कर रहे हैं, जहां पर फल फ्रूट और अलग किस्म की पैदावार हो रही है। तो मेरे हिसाब से ये कृषि उड़ान के लिए भी आइडियल एयरपोर्ट ही है।
सो जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के शहर हैं, उन सब में आप कह रहे हैं कि किसानों के लिए और छोटे उद्यमियों के लिए अपने उत्पाद को न सिर्फ भारत में बल्कि बाकी देशों में निर्यात करना भी आसान होगा कनेक्टिविटी बढ़ने की वजह से।
जो छोटे उद्यमी है, एमएसएमई है, इनके लिए और किसानों के लिए एक जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो होती है लॉजिस्टिक कॉस्ट। अभी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट के लिए अगर उनको उस इलाके से वेस्टर्न यूपी से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जाना पड़े, और उसके लिए अलग अलग वेयर हाउसेज होते हैं, और कुछ पेरिशेबल आइटम्स होते हैं उनके अलग वेयर हाउसेज होते हैं, तो इसके अलग बहुत ज्यादा कॉस्ट लग जाती है। तो एक्सपोर्ट में असली चीज यही देखी जाती है कि आपकी जो कॉस्ट है वो अन्य देशों के मुकाबले कितनी कम है। तो अगर घर के नजदीक ही आपको एक एयरपोर्ट मिल रहा है जहां आपको ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो आपकी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाती है। उस हिसाब से छोटे उद्यमी और किसान दोनों को एक्सपोर्ट करने के लिए ये एक, मैं कहूंगा, आइडियल एयरपोर्ट है।
आज प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि नागरिकों की सुविधा बढ़ाना हमारे लिए सर्वोपरि है, उनका समय बचे, उनका पैसा बचे, और इस संदर्भ में उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में अलग अलग जो हमारे मोड्स हैं ट्रांसपोर्ट के, उनमें जिस तरह के जो सुविधाएं हैं, हमारी सड़कें हैं, हमारे रेल का जो नेटवर्क है, उसमें क्या क्या सुधार हुए हैं उसके बारे में बताया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
आज हमारी सरकार की प्राथमिकता देश के नागरिकों की सुविधा है। देश के नागरिक का समय बचे और उसकी जेब पर ज्यादा बोझ भी ना पड़े, ये हमारा लक्ष्य है। मेट्रो और वंदे भारत जैसी आधुनिक रेल सेवाओं का इसी भाव से ही विस्तार किया जा रहा है। दिल्ली मेरठ नमो भारत रेल, इसका कितना फायदा हो रहा है ये भी हम सब देख रहे हैं। विकसित भारत के विकसित आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारी सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है।
अभी हमने सुना कि कितना ज्यादा बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर विकास हुआ है पिछले 11 वर्षों में, 6 गुना बढ़ा है इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो हमारा खर्च हो रहा है, जो हमारा बजट है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कितना इम्पोर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो कनेक्टिविटी है वो हमेशा मल्टी मॉडल होती है।
एक अमरीकी राष्ट्रपति है, उन्होंने ये कहा था कि अमेरिका की सड़कें इसलिए अच्छी नहीं है कि अमेरिका ग्रेट है, अमेरिका ग्रेट इसलिए है कि उनकी सड़कें अच्छी हैं। ये इस और इशारा करता है कि जिस भी देश में उनका जो ट्रांसपोर्ट है, उनका जो रेलवे हो या बसेस हो या जहाजरानी हो या एविएशन हो, जितना रोबस्ट होगा वो देश उतना ही अधिक तरक्की करेगा। ये बात आते ही मेरे को लगता है प्रधानमंत्री जी ने और जो सरकार है उनकी, जो भाजपा सरकार है, उन्होंने 2014 में ये समझ लिया था। एविएशन पॉइंट ऑफ से अगर मैं बात करूं तो हम इसमें थोड़ा सा पीछे थे अभी तक, और इस दिशा में जो उन्होंने कदम उठाए हैं नए एयरपोर्ट्स को लेकर, नए एयरक्राफ्ट एक्विजिशंस को लेकर, एमआरओ की बात की है, और जेवर जैसे ये और नवी मुंबई जैसे ये जो बड़े एयरपोर्ट आ रहे हैं, ये जरूर हमको भारत को एक नई दिशा देंगे एविएशन में, और यही आगे जाकर हमारे एक्सपोर्ट का, हमारे डेवलपमेंट का एक आधार बनेगा।
इनफैक्ट जो सरकार की पिछले 11 वर्षों में जो प्रयास रहे हैं उससे हम थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन गए हैं पूरे विश्व में। और अगर हम एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 74 एयरपोर्ट थे 2014 में और अब वो उससे दोगुने से भी ज्यादा होकर 160 तक पहुंच गए हैं। इसको आप कैसे देखते हैं और आगे की आपको क्या भविष्य दिखाई देता है जो विकसित भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं?
मैं इसको एक बहुत ही प्रशंसनीय और एनकरेजिंग मैं मानता हूं, जो इतने एयरपोर्ट्स आ गए, नई एयरलाइंस आ गई, छोटे छोटे शहर कनेक्ट हो गए। मैं ऐसी दो एयरलाइन में काम कर चुका हूं जो उड़ान में उन्होंने काफी छोटे छोटे शहरों को, रूपसी, तेजू, किशनगढ़, पूर्णिया, ऐसे शहरों को जोड़ा है बड़े शहरों के साथ। ये अच्छा लग रहा है, एक नई दिशा में हम जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कम है, बहुत कम है। भारत जैसे 1.4 बिलियन हमारी पॉपुलेशन है उस हिसाब से, और बहुत बड़ा मुल्क है, ये अभी बहुत कम है। और अभी सरकार भी तरक्की करना चाह रही है, वो है अपने एयरक्राफ्ट, हम भारत में अपने एयरक्राफ्ट बनाएं। इसमें हमने हमारी एक ब्राजील की कंपनी के साथ अभी रिसेंटली टाइप हुआ है एक भारतीय उद्यमी के साथ, और वो हिंदुस्तान में एयरक्राफ्ट बनाने की और बात कर रहे हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट के बिना एविएशन का विकास संभव नहीं है। ये बात इस सरकार को समझ आ गई है। और दूसरी है कि MRO, क्योंकि अभी हिंदुस्तान से जितने भी एयरक्राफ्ट हैं मेंटेनेंस के लिए, हमारे बी चेक होते हैं, सी चेक होते हैं, बी चेक तो हिंदुस्तान में हो जाता है, सी चेक के लिए हमको सिंगापुर जाना पड़ता है, हमको दुबई जाना पड़ता है, वो अगर हिंदुस्तान में होने लग जाएंगे तो एक तो हमारी विदेशी मुद्रा बचेगी, और दूसरा है कि एक नई मार्केट पैदा होगी कि आसपास के देश आपके यहाँ पर आके अपने हवाई जहाज जो है वो रिपेयर कराएंगे। तो इस दिशा में भी एक बड़ा कदम उठाया गया है।
जिस तरह के हम आजकल संकट देख रहे हैं, पहले कोरोना का संकट आया, लेकिन अभी जो पश्चिम एशिया का संकट है उसके कारण खासकर जो ऊर्जा संकट पैदा हुआ है उसको देखते हुए आपको लगता है कि जितना ज्यादा हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे हर एक सेक्टर में, जैसा कि हम MRO फैसिलिटीज बना के या एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में भी कोशिश कर रहे हैं, आपने बताया एयरक्राफ्ट बिल्डिंग में भी कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है ताकि हम क्राइसिस सिचुएशन से डील कर सकें।
हाँ, ये एविएशन का एक समस्या है कि ये साइक्लिक है। जैसे जैसे विश्व में मंदी आती है एविएशन के नीचे आ जाता है, जैसे जैसे विश्व में आर्थिक संकट से ऊपर उभरता है और प्रॉस्पेरिटी पैदा होती है तो एविएशन भी उसके साथ चलता है। हिंदुस्तान में 40% के आसपास जो हमारी एविएशन कॉस्ट है वो डॉलर सेंट्रिक है, तो ये जरूरी है कि जो एविएशन में जो डॉलर को आप रिप्लेस करके अगर आप हिंदुस्तान के अंदर ही वो कंपोनेंट्स और वो फ्यूल और वैसा ही आप बना पाएं जिससे कि आपकी विदेशी डिपेंडेंस कम हो। तो इस दिशा में जो कदम उठाए जा रहे हैं मैं उससे सहमत हूं और मैं उससे खुश भी हूं। जहां तक वेस्ट एशिया की बात है, अभी जो संकट आया है मैं उसमें अगर देखूं तो अन्य देशों के मुकाबले भारत ने बहुत बेहतर किया है
जी।
अभी भी हमारे ATF फ्यूल जो अभी ATF के जो रेट है वो $112 के ऊपर चले गए हैं, और बावजूद उसके प्रधानमंत्री जी ने उसके एक्सपोर्ट के ऊपर अपना जो ड्यूटी है वो बढ़ा दी है। तो अभी भी जो एयरलाइंस हैं, एविएशन कंपनीज हैं, उनको काफी हद तक राहत देने की कोशिश है।
प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है उसकी भी बात की और सबसे कहा, पूरे देशवासियों से कहा कि ये सबका प्रयास है कि इससे आप शांति से और धैर्य से डील करें और जो र्यूमर्स है, जो मिस इन्फॉर्मेशन है उस पर ध्यान ना दें। ये कितना इम्पोर्टेंट है?
ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि और जो एविएशन है इसके संदर्भ में जब भी र्यूमर्स फैलते हैं वो काफी तेज रफ्तार से फैलते हैं। जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उनके अगर दाम बढ़ गए, डोमेस्टिक फ्लाइट्स के दाम बढ़ गए, इसके बारे में जो एक र्यूमर्स फैलते हैं, अफवाह फैल रही है, ये मेरे हिसाब से डिस्करेजिंग करना चाहिए। एयरलाइंस को कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे अफवाहें हैं, जो ऐसी र्यूमर्स हैं, इनको अपने लेवल पे और अपनी जनता से बताएं कि ये गलत है।
सो एविएशन सेक्टर के समावेशी विकास, समावेशी विस्तार और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के विभिन्न पहलुओं पर हमसे चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में